सत्संग जी प्यार से कहना धन नंकार जी, आज 75th नंकारी संत समागम के ये चाहे वो दिन तो सेकंड है, कल से बदल रूप में पूरा दिन संगतों ने उसका भी आनंद लिया, पर सत्संग रूप का आज ये जो पहला दिन और कैसे हर किसी ने इसका एक भाग बनने के लिए एक हिस्सेदार अपनी सेवाओं को मन रूप से इसको सफलता के लिए, चाहे ये तिथि तो कल से शुरू हुई समागम की, पर जो सेवाएं इससे पहले अर्पित करते आए, चाहे वो सेवा दल के सदस्य हों या सत्संग के महात्मा, सभी बहने भाई बच्चे किसी भी उम्र के वो मोहताज नहीं, हर किसी को दासी जब सुबह ग्राउंड में भी एक जाती प्रतिदिन, चाहे सुबह जाए चाहे वो आफ्टरनून्स हो इवनिंग्स हो, पर एक ही हर समय का वो कॉमन दृश्य कि हर कोई लगन से पूरी एक श्रद्धा भाव से सेवाओं में अर्पित है कि ये संतों के लिए मैदान तैयार होना है, यहाँ समागम होना है और सभी ब्रह्मज्ञानियों ने आना है, तो किसी की भी सेवाओं के प्रति इनके आराम के लिए कोई कमी ना हो। और आप सबने भी देखा होगा कि ये सेवा दल की सेवाएं और ये संगत के महापुरुषों की सेवाओं की वजह से आज चाहे वो इतना अपग्रेडेड एक रूप सबने देखा पिछले समागमों से, तो कैसे हर किसी ने जहाँ इतने अभी हमने देखा, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री में भी, कि ये समागमों का सिलसिला चाहे वो 75 ईयर्स का ही रहा है, पर संतों का तो भाव युगों युगों से ही एक सेवा भाव का रहा है। और कल का भी दिन एक जो पहला सेवा दल रैली के रूप में जो एक नियुक्त किया, वो इसलिए क्योंकि जब भी सत्संग होता है ये एक आराम से संगतों की सहूलत के लिए ये सेवा दल ही होते हैं, चाहे वो अरेंजमेंट्स में पूरा अपना भागीदारी देते हैं, चाहे वो पार्किंग की हो, लंगर की हो, पंडाल के अंदर लाइनों को मैनेज करने की हो, या अन्य और स्पॉट्स पे भी, कहीं पे भी पूरे मैदानों में, सिर्फ अभी नहीं समागम के दौरान नहीं, ये तो हर संगत में ही इस तरह एक बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते हैं। तो कैसे एक सेवा करते हुए ये सेवा दल का भी और संगतों का भी भाव यही होता है कि मन समर्पित इस परमात्मा के ऊपर, ताकि अपना अहंकार बीच में ना आए और ये सेवा एक मानवता के लिए समर्पित सेवा हो, कहीं कोई पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, अपने कोई एक डर नहीं हो कि ये कोई सेवा हम अगर करेंगे तो प्रभु को रिझा लेंगे और इसके प्रति ये एक हमें जिंदगी थोड़ी आराममय हो जाएगी, क्योंकि भक्ति में तो कोई फिर ट्रांजैक्शन नहीं होता, एक अनकंडीशनल लव होता है एक इंसान का इस सच्चाई के साथ, इस निरंकार के साथ, इस परमात्मा के साथ, कि एक दिल जहाँ प्यार करता है वहाँ भय की एक जगह नहीं होती, क्योंकि भय में की गई चीज़ें तो फिर किसी चीज़ पे आधारित होती हैं, पर जो चीज़ें प्यार से करी गई हों उसका आधार ही प्यार होता है, फिर उसको करने की वो प्यार ही मोटिवेशन है उस कार्य के पीछे, तो वो पूरे दिल से की जाती है, उसमें हर एक की भलाई शामिल की हुई होती है। हालांकि दुनिया में देखा जाए तो अक्सर प्यार के पीछे भी अगर कोई ना कोई सौदेबाजी होती है, पर भक्तों का प्यार संगत के प्रति, इस परमात्मा के प्रति, इस निराकार के प्रति, ये जैसे अभी हमने शेर भी सुना था, बेगर्स जिना दी उल्फत है वो नमाज दी कीमत नहीं मंगदे, कि किस तरह एक जो बिना सौदेबाजी के ये एक ट्रांजैक्शनल प्यार नहीं है, ये प्यार का ही एक उपज और प्यार ही इसके रिजल्ट है। जैसे अक्सर भक्ति में यही बोला जाता है कि सेवा का फल नहीं मांगते संजन, अगर कुछ चाहते हैं तो सेवा के बदले और सेवा मांगते हैं कि जितनी सेवा की जाए वो कम है। मन से सेवा इस शरीर रूप में, चाहे वो छोटा सा छोटा योगदान हो या वो एक बहुत ही बलशाली शरीर किसी का, तो वो उस अनुसार, तो कोई भी सेवा जहाँ छोटी भरी नहीं होती, ये तन मन धन से की गई सेवा, हुक्म अनुसार की गई सेवा, सबके एक भले की सेवा, पूरे संसार के हर एक मानव के लिए कही गई सेवा, जो एक प्रवान सेवा होती है। कैसे एक हम अगर उदाहरण देखें कि एक छोटा सा बीज जो होता है उसमें पूरा पोटेंशियल होता है एक बहुत ही घना वृक्ष होने का, एक पेड़ बनने का, इतने फल लगते हैं, इतने पत्ते लगते हैं, वो सूरज के समय छाएं देने के काम आता है, और एक उसकी अपनी कितनी, कभी कभी ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है। तो एक बीज से ये शुरुआत हुई इतने विशाल वृक्ष की, जहाँ वहीं पे आज जो हम बार बार इस समागम की थीम रूहानियत और इंसानियत संग संग सुन रहे हैं, तो ये भाव भी अगर देखा जाए कि किस तरह एक इंसान रूहानी कैसे बने, ये जो एक इंसान का पूरा पोटेंशियल होता है, जो साइकोलॉजी में भी हम एक अपने मास्लो की पिरामिड की बात करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो किस तरह हर इंसान का वो स्टेज रूहानियत में रंगे होना, वो वही है जब एक पूर्ण तरह से मुकम्मल इंसान हो तो ही रूहान हो। और ये रूहानियत की रंग में जो भी है रंगा हुआ, वो हर समय फिर चाहे सेवा कर रहा है तो भी वो एक सेवा का भाव, असली भाव से सेवा कर रहा है। फिर उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं कि ये हम किसकी सेवा कर रहे हैं, सामने कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये मन में कैसे भाव रखते हैं, क्या कल्चर है इनका, ये एक किस तरह का खाना पीना खाते हैं, नहीं। फिर जो सेवा का भाव होता है वो कोई, चाहे अपना पड़ोसी जो जानकार है या फिर कोई बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंजर, बिल्कुल एक समान वो भाव होता है सेवा का, कि किस प्रकार जो सेवा कर रहे हैं वो एक शरीर किसी सामने वाले का, चाहे वो इंसान का शरीर तो है पर सेवा तो इस परमात्मा की हो रही है। क्योंकि जहाँ हम एक सोचते भी हैं बात और जानते भी हैं कि हर इंसान की ये अंदर वो फुल पोटेंशियल है परमात्मा होने का, ये बात कि जब रूह ही एक इंसान की परमात्मा का अंश है, तो किस तरह इस परमात्मा के साथ एकमिक होके ये वो बात कि जैसे दासी एग्जाम्पल पेड़ की दे रही थी कि एक जब पूरी तरह से वो पेड़ अपना एक एक कार्य अच्छे से करता है तो वो पत्ते भी देता है, फल भी देता है, उसी तरह एक एक बीज अगर साथ ही खराब हो जाए तो ना तो उसमें से कुछ प्रफुल्लित होगा, कुछ अंकुरित होगा, ना वो पेड़ बनेगा, ना वो छाया देगा। और वहीं इंसान भी अगर फिर ये परमात्मा की रोशनी से अगर रूबरू नहीं हो पाते, अपनी असली पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा नहीं कर पाते, तो फिर उनके अंदर का भी वो पोटेंशियल पूरा एक नहीं जी पाए वो जीते जी, वो एक फिर जिंदगी सिर्फ गुजरानमय ही जी रहे हैं, जहाँ जीवन में अपने कुछ ड्रीम्स परस्यू कर लिए, कुछ अपने एम्बिशंस को एक पूरा करते चले गए, या फिर कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही मैकेनिकली एक अपना जीवन व्यतीत करते गए, एक सिर्फ अपने कार्य को कार्य की तरह करते गए। वहीं एक संत महात्मा जो ब्रह्मज्ञानी है, उसके जीवन में फिर हर समय की वो सेवा आ जाती है, वो इस परमात्मा के जब ध्यान में होता है तो फिर दिनमर्रा में जो भी करेंगे रोज़मर्रा में, तो वो हर पल इस निरंकार के ही रंग में है, तो कोई भी कार्य कार्य नहीं है, हर कार्य सेवा है। और कैसे फिर मन से इच्छा होती है कि जो बीज प्रफुल्लित नहीं हो पाए, उन बीजों को किस तरह एक एक्टिव किया जा सके, कि उनका भी अगर अभी सिर्फ थोड़ा डैमेज है तो अभी भी किया जा सकता है, उनको एक उपजाऊ बनाया जा सकता है उनको। और वही कोशिश फिर संतों की लगती है कि ब्रह्म ज्ञान रूप हर किसी के घर तक पहुँचे, हर किसी के मन तक पहुँचे। कैसे फिर कोशिश की जाती है कि हर कोई आए, सत्संग करे, सेवा करे, सुमिरन करे, इस परमात्मा से जुड़े। और जहाँ फिर वो बात अभी हमने समागमों की ही लड़ी की, वो डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि ये समागम रूप तो एक शुरुआत में चाहे विस्तार इतना नहीं जितना आज देखने को मिल रहा है, ये समागम का उस रूप में संगत रूप का पहला दिन और पंडाल ऑलरेडी भर गया है, और जब ये शेड का लगाया गया शुरू में तो यही सोच के कि शायद ये सफिशिएंट होगा, पर ये पहले दिन ही पता लग रहा है कि सबका प्यार कितना, चाहे देश से या विदेश से, और जो अभी नहीं भी पहुंच पाए, चाहे वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इंटरनेट पे, या फिर कभी कोई काम पे होते हैं जहाँ एक वो गैजेट्स अलाउड नहीं होते वर्क प्लेसेस पे, तो वहाँ वो चाहे समागम नहीं भी देख पा रहे, पर सबके मन इस परमात्मा से कनेक्टेड हैं। वो एक भाव कि दूर दराज में जहाँ अभी इंटरनेट की सर्विसेज भी नहीं है कुछ रूरल पार्ट्स में, तो वहाँ भी महापुरुष पूरा यत्न करते हैं कि कहीं किसी के दूसरे शहर में इंटरनेट कोई एक रिश्तेदार हो, वहाँ पे भी वो फिर एक टेलीफोन कॉल करके वो कितने ही घंटे फ़ोन के थ्रू फिर ये सत्संग सुनते रहते हैं। और संतों का मन का भाव तो इतना कि दासी अभी जो दो दिन पहले जनरल बॉडी मीटिंग भी हुई, वहाँ पे जब मीटिंग के बाद सभी एक वो एक ड्यूटी जिन जिन की जिस तरह भी लगी, और एक एक के रूबरू होने का अवसर मिला, और वहीं एक महात्मा कहने लगे नमस्कार करके कि दास के बेटे ने कल ही अपना नश्वर शरीर त्याग दिया है, और आज दास मीटिंग करने दिल्ली पहुंच गया है अपने शहर से, आप बस परिवार के ऊपर ये दातार ये एक आशीर्वाद बनाए रखे कि सबसे पहले हम सेवा सिमरन सत्संग को ही प्राथमिकता दें। तो वही ख्याल दासी का भी कि अक्सर दुनिया में तो देखा गया है कि कोई शरीर का अगर एक बिछड़ा हो जाता है, ये किसी की यात्रा घर में पूरी होती है शरीर की, तो मन कैसे फिर तरह तरह के प्रश्न मन से इस दातार से कंप्लेंस करना शुरू करता है कि ये इतना समय ही क्यों दिया, इससे ज़्यादा देकर ये जीवित होने चाहिए थे। और कैसे वहाँ संतों का भाव कि चाहे घर में अभी ही वो उस रूप में शरीर तो एक अपने पुत्र का नहीं रहा उनके, पर उनकी प्राथमिकता सेवा पे ये मन टिका हुआ, और वो कैसे एक सेवा के लिए अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस मीटिंग में भी पहुँचे। तो ऐसे भाव जहाँ महापुरुषों के होते हैं वो एक कही सुनी बात नहीं है, चाहे हम अभी यही देख रहे हैं कि कितने महापुरुष 75 ईयर्स के हर समागम में जहां उपस्थित हुए हैं आज भी हैं, और वो पहला समागम भी उन्होंने अटेंड किया, और कितने ऐसे जो पहली बार शायद इस बार आए हैं समागम करने, तो ये लगन, ये भाव चाहे आज की हो या इतने वर्षों की, ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि सबको पता है यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि ये मिशन हमेशा एक सच्चाई के साथ ही जोड़ता है। ये ऐसी सच्चाई के साथ जोड़ता है जो परिस्थितियों और समय के साथ बदलती नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंटली एक सेम ही रहती है। तो जब ऐसी सच्चाई के साथ ये जुड़कर एक स्टेबिलिटी मिलती है, फिर एक मन में एक उथल पुथल नहीं होती। ये मन जानता है कि ये कुछ समय की ही बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर एक परिस्थितियाँ हमारे अनुसार हो जाएंगी। तो कैसे, जहाँ हर एक ने आज चाहे डॉक्यूमेंट्री रूप में भी देखा, तो जो वो एक विश्वास की बात कर रहे थे, जो एक इतिहास हमने देखा, वो कोई कहा सुना इतिहास नहीं था। सभी का वो जीता हुआ एक बहुत ही रीसेंट इतिहास है। कोई वो बात नहीं कि कोई माइथोलॉजी की कर रहे हों कि बहुत हज़ारों साल पहले की, नहीं, ये तो अपने मुंह से बयान, वो इंटरव्यूज़ रूप भी सभी ने देखे कि कैसे ये सच्चाई के ऊपर महात्मा दृढ़ होकर इसके निरंकार के प्रति अपनी लगन जो लगा लेता है, अपनी पहचान इस परमात्मा के साथ करके अपना एक स्वरूप स्वीकार लेता है, तो कैसी फिर वो ज़िंदगी बन जाती है, वो जीने का आधार, फिर ये हर समय आनंदित जीवन हो जाता है। अगर कोई इंसान देखा जाए, कोई मैदान में खड़ा हो डे के टाइम और ऊपर सूरज चमक रहा हो, तो उसको ये अगर कहा जाए कि मान लीजिए सूरज चढ़ा हुआ है, तो वो इंसान तो हंस के कहेगा, हम माने क्यों, ये कोई हाइपोथेटिकल बात तो नहीं है, सच में ही ऊपर सूरज चढ़ा हुआ है। तो वही बात कि जो एक विश्वास की बात कि सत्य ये परमात्मा मिल सकता है और इसके ऊपर जीवन आधारित करके पल पल जिया जा सकता है, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो बहुत ही कर्म कांड करने के बाद वो कोई अवस्था मिलेगी, नहीं, ये तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही जर्नी शुरू हो जाती है, ये भक्ति शुरू हो जाती है, पल पल इसके आश्रय जीकर एक जिया जा सकता है। और किस तरह हर एक ने जहाँ आज भी वही भाव रखे मन में, और हमेशा एक यही रहता है कि हमने एक मुकम्मल इंसान बनना है, एक पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाना है, कि जो जो भी एक हमारा कैरेक्टर बनता है, वो इसलिए ना हमने अच्छाई को अपनाना है, करुणा दया विशालता नम्रता प्रीत, ऐसे हमने सिर्फ शब्द को रटन नहीं कर लेने, वो जीवन में उतारना है, और वो स्वाभाविक हो जाता है, बहुत नेचुरल हो जाता है उनको इम्प्लीमेंट करना जीवन में, जब मन इस भगवान के, परमात्मा के, अल्लाह के, इस निराकार के रंग में होता है, तो फिर सब बिल्कुल ही एक आराम से, बिल्कुल एक जैसे एक पत्ता नदी में डालो तो कैसे चाहे छोटी छोटी वेव्स खाते हुए वो फ्लोट करते हुए निकल जाता है, उसी तरह फिर एक भक्त भी अपने जीवन में इस परमात्मा के आधार को अपना मजबूत करके फिर बहुत ही आराम से जहाँ जीवन भी व्यतीत करता है, एक वरदान भी बनता है पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, और मन में किसी के प्रति भी नफ़रत नहीं लाता, एक हर कोई भी हम अगर जहाँ रिलीजन की बात करते हैं तो कोर की बात यही है कि एक हर कोई ही एक परमात्मा में विश्वास रख रहा है, और यहाँ वो सच्चाई एक रूबरू दिखाई जाती है। और कैसे वो सच्चाई से जब एक हम अपने अंदर वो डाल लेते हैं तो फिर एक हर पल का सांस भी लेना एक बहुत ही जिस तरह से इनवॉलंटरी हमारी अपने आप चल रही होती है, तो उसी प्रकार ये दातार के एहसास में पल पल बिताने से हमारा हल मन भी जहाँ साफ होता चला जाता है, हर इंसान में हमें फिर परमात्मा ही नज़र आता चला जाता है, हमारे अवगुण भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और साथ ही हमें एक बहुत ही विशाल दुनिया के लिए एक ये समझ आ जाता है कि चाहे एक दूसरा तो फ़र्क बहुत होगा पर कोई एक बायसनेस मन में नहीं आती, फिर वो रेसिज्म का भाव मन में नहीं आता, वो कोई कलर की वजह से किसी से नफरत नहीं आती, हर किसी को ये पता चल जाता है कि जिस तरह एक फूल के बाग में तरह तरह के अलग फूल दिखते हैं पर वो फूल इकट्ठे भी प्यारे हैं और अकेले देखा जाए तो भी कितने प्यारे हैं, उसी तरह हर मानव हर इंसान अपने आप में इस परमात्मा के ही बनाए हुए सभी बहुत विशेष, तो किसी से घृणा किसी से नफरत ये स्वाभाविक ही है कि नहीं होगी, तो कैसे अपने मन को हर समय इस दातार पे लगाए रखें। और जो आज रूप हम देख रहे हैं चाहे ये 75 ईयर्स की बात है पर हम उसको उस तरह लें कि अगर ये हम इसी पल से अपनी कुछ चीज़ें पुरानी जो कहते हैं बैगेज जैसे मन का किसी के प्रति या कोई अपनी बुरी आदत अगर वो इसी समय से छोड़ा जाए, इसको भी एक पहला समागम की तरह ही मानकर चलें, तो ये हर पल जीवन का बहुत ही सुनहरा होता जाएगा। तो दासी और समय नहीं लेगी, आगे वाले दिनों में अपने मन के भाव आप सबके चरणों में रख देगी, और अंत में वही बात जो दासी हर समय अरदास करती है कि हर कोई इस निरंकार के साथ हर समय जुड़ा रहे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।